अध्याय 10 तरीके घर घर। विशेष लोगों के प्रयास के साथ लोगों के घर घर जाकर प्रचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े शहरों में एक ऐसा वर्ग है जो जनसभाओं में नहीं पहुंच पाता। ऐसे लोगों को ढूंढा जाना चाहिए जैसे चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है। उनके लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत परिश्रम करना अवश्य है। जब व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं किया जाता तब बहुत से कीमती अवसर खो जाते हैं। यदि उनमें सुधार किया जाता तो वे अवश्य ही कार्य को आगे बढ़ाते। कार्यों के साथ सहानुभूति के शब्दों की भी जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं ही हमें पहले दिखाया कि सुसमाचार प्रेम से किए गए प्रचार के साथ भलाई के कार्यों से भी फैलाया जाता है। इन कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार करने की मद करो जिनको मद की जरूरत है, और यदि अवसर मिलता है तो उन्हें क्रूस की कहानी बता सकते हैं। उनको क्रीस्ट का पाठ पढ़ाया जाना है। उन्हें बाइबल की शिक्षाओं के विषय बताना अभी जरूरी नहीं, उन्हें प्रभु यीशु के काम और उसके बलिदान के बारे में बताएं। उन्हें प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण कराएं ताकि उसकी पवित्रता उनके जीवनों में दिखाई पड़े। क्रीस्ट यीशु व्यक्तित्व को नहीं महत्व देगा, वह उदार व समर्पित मसीहियों को काम देगा जो भले ही पढ़े लिखे ना हों अन्य लोगों की तरह। ऐसे लोग उसकी सेवा के कार्य को घर घर जाकर प्रचार करेंगे, आग के पास बैठकर। यदि वे लोग नम्र, बुद्धिमान और प्रभु का भय मानने वाले और अधिक परिश्रम कर परिवारों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करें और एक अभिषिक्त सेवक से अधिक कार्य करें। हमारी कलीसिया के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर प्रचार करने का काम होना चाहिए। उन्हें बाइबल अध्ययन देना और पत्रिकाएं बांटना चाहिए। जो घर घर जाकर प्रचार करने का काम करते हैं वे प्रचार के और अधिक क्षेत्रों में जाने का अवसर पाते हैं। उन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करना और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। उन्हें गरीब, तंगहाल और मुसीबत के मारों के बीच प्रचार करना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो मजबूर हैं, जिनके पास ताकत नहीं अपनी उस भूख पर काबू में करने की, और जिन्होंने अपने शौक पूरे करने के कारण अपने स्तर को नीचे गिरा दिया है। ऐसे लोगों में यदि परमेश्वर के प्रति रुचि जागृत होती है तो इनके साथ बड़ी वफादारी और लगातार प्रयत्न करने के द्वारा उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं। कई लोगों के पास दयालुता का व्यवहार कर पहुंचा जा सकता है। उनकी भौतिक जरूरत पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि वे हमारी निस्वार्थ सेवा को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसके लिए प्रभु के प्रेम पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। सब कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार करना और बाइबल की बातें बताना, धार्मिक पुस्तकें बांटना तथा अपने जीवन में आई ज्योति के बारे में अपनी गवाही देना, जिनसे उनकी स्वयं की आत्मा आशीषित हुई। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु घर घर जाकर रोगियों को चंगा करता, शोकित लोगों को सांत्वना, दुखित एवं क्लेशित लोगों को ढाढ़स बंध। ना और दुखियारों की शांति के बारे में कहना। उसने छोटे बच्चों को अपनी बाहों में लेकर आशीष की और उनकी माताओं को आशा भरे शब्द कहकर ढाढ़स बंधाया। कभी न खत्म होने वाली नम्रता और उदारता से यीशु हर प्रकार के रोगों, दुखों व कष्टों से ग्रसित मनुष्यों से मिला। यह काम उसने अपने लिए नहीं किंतु लोगों के लिए किया। वह सभी का सेवक था। ये उसका मांस और लहू है जो हमारे लिए आशा और सामर्थ्य लाता है जब भी हम उसके नजदीक आते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को प्रेम एवं सहजता से प्रस्तुत करना, घर घर जाकर बताना आदि प्रभु के निर्देशों के साथ प्रभु ने अपने शिष्यों को दिए। जब उसने उन्हें पहली बार सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा था, प्रभु की भक्ति के गीतों द्वारा, हृदय की गहराई से की गई प्रार्थना के द्वारा बहुतों तक पहुंचा जा सकेगा। स्वर्गीय सेवक भी वहां उपस्थित होगा लोगों को हृदय परिवर्तन करने के लिए। उसका वायदा है, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। इस बात की निश्चितता के साथ कि एक ऐसा सहायक हमेशा हमारे साथ है, तो हम पूरे विश्वास, आशा और जोश से प्रभु की सेवा करेंगे। घर घर जाकर प्रचार करने वाले सेवकों की आवश्यकता है। प्रभु बुलाता है कुछ ऐसे निर्णायक प्रयास जो आगे बढ़कर किए जाए वहां, जहां लोगों को बाइबल की सच्चाई पता नहीं है। भक्ति गीत, प्रार्थनाएं तथा बाइबल अध्ययन उन लोगों के घरों में करें। अभी और आज ही समय है कि हम इस काम पर निकल जाएं। उन्हें वो सब चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ। जो ये काम करते हैं उन्हें बाइबल के वचनों की जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है यही उनका एकमात्र हथियार होना चाहिए जो उन्हें छुड़ाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अपने घर के आसपास रहने वालों से मिलो और दयालुता और सहानुभूति से उनके हृदय तक पहुंचने की कोशिश करो। ये निश्चित कर लो कि इस तरह से उनसे बातचीत करो कि मतभेद होने का मौका न मिले। और याद रखो कि जिन्हें आज के समय की सच्चाई की जानकारी है किंतु फिर भी अपनी ही कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं और उन अविश्वासी लोगों को सच्चाई में लाने से इनकार के कारण हिसाब देना होगा, उन्हें इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपने पहले प्रचार करने के लिए चेलों को वहां जाना था जहां प्रभु यीशु मसीह पहले जा चुके थे और उन्हें अपना मित्र भी बना लिया था। उनकी उस यात्रा की तैयारी जरूर साधारण सी होगी। कोई ऐसी वजह नहीं होना थी जो उन्हें उनके मकसद से अलग कर सके, क्योंकि उन्हें एक महान काम करना था। उन्हें ना ही अपने शत्रु को उकसाना था, ना ही अपने काम को बंद करना था। उन्हें एक साधारण किसान की तरह रहना था। कोई धार्मिक शिक्षक का पहरावा या अन्य कोई विशेष वस्त्र नहीं पहनने थे कि वे अलग से पहचाने जाएं। उन्हें प्रभु के मंदिर में भी नहीं जाना था, न लोगों को सभा के लिए बुलाना था। उनका काम घर घर जाकर प्रचार कार्य को अंजाम देना था। उन्हें बेकार के अभिवादन में समय नहीं गंवाना था या घर घर जाकर कोई मनोरंजन करना था, किंतु हर जगह जाकर उन्हें जो योग्य थे उनके घर में वचन प्रचार करना था। जो उन्हें अपने घर बुलाते उनका स्वागत करते थे, जैसे स्वयं मसीह यीशु का स्वागत कर रहे हों। हर घर में उन्हें आशीष भरा वचन कहना था, इस घर में शांति हो। उस घर में प्रार्थनाओं के द्वारा लोग आशीषों को पाएंगे। उनके प्रशंसा के गीत तथा बाइबल के पवित्र वचनों को पारिवारिक समूह में पढ़ना सभी कुछ आशीषों से भरपूर होगा। अपने पड़ोसियों से मित्र भाव से मिलिए तथा उनसे बातचीत कीजिए। वे लोग जो इस काम को हाथ में नहीं लेंगे और अलग तरह का व्यवहार करेंगे जैसा कई लोगों ने किया है, वे प्रभु का पहला कासा प्रेम छोड़ चुके हैं। अब वे केवल आलोचना, भर्त्सना और अपने भाइयों को बुरा भला ही कहेंगे। प्रेरितों का प्रयास लोगों को बाहर नहीं ला सका, ना ही अनेकों लोगों तक चेले पहुंच सके, किंतु प्रभु यीशु ने घर घर जाकर सुसमाचार सुनाया और इस प्रकार पूरा घराना उसका परिचित हो गया। उसने बीमारों को चंगा किया, दुखी लोगों से मिला, सताए गए लोगों को सांत्वना दी और पाप में गिरे हुओं को उठाया। और जो कुछ उसने कहा और किया उन सब से उसने प्रभु की महिमा की। इस प्रकार उसने काम किया निर्बलता में, भय में और कांपते हुए। वो कांपा कि कहीं उसकी शिक्षा मनुष्यों की ओर से तो नहीं, जबकि उसे केवल स्वर्गीय पिता की शिक्षा देना थी। अपने पड़ोसियों के पास एक एक करके जाओ और उनके नजदीक जाओ, जब तक कि उनका हृदय तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम व रुचि देखकर पिघल न जाए। उनसे सहानुभूति रखो, उनके साथ प्रार्थना करो और मौका ढूंढो कि कब उनकी भलाई कर सको। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, कुछ लोग आपस में मिलकर उनके साथ बाइबल का वचन उनके अंधकार भरे मस्तिष्क को रोशन करने के लिए मिलकर अध्ययन करो। जागते रहो। वो जिसे प्रभु को लोगों की आत्माओं का लेखा जोखा देना है और अधिक से अधिक अवसरों पर काम करो, जिसके कि प्रभु की दाख की बारी में उसके साथ परिश्रम करो। मत करना, जितना अधिक हो सके उनके साथ हमेशा भलाई करना, जिससे तुम कम से कम कुछ आत्माओं को जीत सको। हमें आत्माओं की खोजने की जरूरत है, जैसा कि प्रेरित पौलुस भी जिस तरह घर घर जाकर लोगों से रो रोकर विनती करता, उन्हें सिखाता और कहता, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाओ। प्रभु ने मेरे सामने एक काम रखा है जो शहरों में करना है। इन शहरों के विश्वासी लोग भी अपने पड़ोसियों के घर जाकर प्रचार करें। उन्हें शांति से, उदारता से प्रभु की सिखाई सब प्रकार की बातें सिखाना है, कि वे जहां भी जाएं स्वर्ग की बातों पर मनन करें। एक अकेला वचन का सुनने वाला। प्रभु यीशु का अधिक काम एक व्यक्ति से बातचीत करने के द्वारा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो वचन सुनकर खुद विश्वास करे, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा भरोसेमंद था, क्योंकि उस एक के द्वारा बड़ी चतुराई से लाखों तक सुसमाचार पहुंचाया गया। वह थकाहारा और कमजोर था, फिर भी उसने उस स्त्री से बातचीत करने का सुअवसर हाथ से जाने न दिया, जबकि वह स्त्री अनजान थी, इज़राइली नहीं थी और पाप में जी रही थी। प्रभु यीशु ने कभी भीड़ के इकट्ठा होने की प्रतीक्षा नहीं की। जो कोई उनके पास इकट्ठे होते थे, उन्हीं को सिखाने लगते थे और धीरे धीरे करके वहां से गुजरने वाले ठहर कर सुसमाचार सुनने लगते थे, जब तक कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती और सभी सुनने वाले अचंभित होकर आसमान से भेजे गए शिक्षक की बातें सुन और अचंभित होते थे। प्रभु के लिए काम करने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे छोटे झुंड के बड़ी भीड़ की जरूरत है। चाहे सुनने वाला एक ही क्यों ना हो, न जाने उसके प्रभाव से वचन कहां से कहां पहुंच जाए। मसीह के चेलों को मसीह का एक सामरी स्त्री से बात करना छोटा काम प्रतीत हुआ, किंतु मसीह ने उस स्त्री से बड़े उत्साह से और खुले शब्दों में बड़े अधिकार के साथ बातें की, जो राजा, याजक और सलाहकारों से भी न की होगी। जो शिक्षा उसने उस स्त्री को दी, वह पूरी पृथ्वी के सबसे दूर दराज के इलाकों में पहुंच गई। काफी करीबी रिश्ता। अब जरूरत है कि लोगों के करीब आने की, एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की। यदि धार्मिक वचन सुनाने पर कम और व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक समय दिया जाए, अधिक परिश्रम किया जाए, तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रभु चाहता है कि उसके अनुग्रह भरे शब्द घर के हर एक सदस्य तक पहुंचे। ये काम बहुत बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। ये प्रभु यीशु का नियम था। जिन लोगों ने आत्माओं जीतने का काम अधिक सफलतापूर्वक किया है, उन स्त्री व पुरुषों ने अपनी योग्यता व सफलता पर घमंड नहीं किया, किंतु उन्हें नम्रता व विश्वास से जो कोई भी उनके पास मिला, उन्होंने उसकी मदद की। प्रभु यीशु ने भी सही किया था। वह अपनी इच्छा अनुसार जिनके पास जाना चाहता था, वे उसके आसपास ही होते थे। प्रभु यीशु की तरह सहानुभूति रखने के द्वारा हम भी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिले सकते हैं और मौका ढूंढ सकते हैं कि अनंत जीवन जैसी बेशकीमती नेमतों के प्रति उनका क्या नजरिया है। इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका हृदय कठोर धरातल, जो मुख्य मार्ग के लिए तैयार किया है, के समान हो, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के बारे में उन्हें बताना व्यर्थ ही हो। लेकिन भले ही सीख किसी को बदलने में कामयाब न हो और बहस भी कमजोर पड़ जाए, किंतु प्रभु यीशु के प्रेम को यदि व्यक्तिगत रूप से लोगों को बताया जाए, तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघले बिना न रहेगा, जहां सच्चाई का वचन रूपी बीज जड़ पकड़ सके। आसपास के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलो, उनसे बातचीत करो, जान पहचान बढ़ाओ। प्रचार करना ही काम नहीं आएगा, जहां और भी काम होना है। जिस भी घर में आप जाएंगे, वहां प्रभु का दूत मौजूद होगा। यह किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं हो सकता। नहीं पैसा देने या पैसा देकर करवाने से ये काम संभव है। धार्मिक संदेश भी काम नहीं आएंगे, किंतु लोगों से मिलकर बातचीत कर, उनके लिए प्रार्थना कर और सहानुभूति रखकर लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रचार करने का तरीका है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ठान लेना है, विश्वास में दृढ़ होना, धीरजवंत होना और आत्माओं को बचाने के लिए उनके प्रति प्रेम होना आवश्यक है।
मसीही कलीसिया की स्थापना यूहन्ना, अन्द्रियास, शिमोन, फिलिप्पुस और नतनियल की बुलाहट से हुई। यूहन्ना के दो शिष्यों को यीशु के पास लाया, तब उनमें से एक अन्द्रियास ने अपने भाई को उद्धारकर्ता के पास लाया। तब फिलिप्पुस बुलाहा गया और वो फिर नतनियल की खोज में चला गया। इन उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए कि व्यक्तिगत प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, मित्रों और पड़ोसियों से सीधे अपील करना सिखाना सहज है, और कुछ वे लोग भी हैं जो जीवन भर प्रभु यीशु से परिचित थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी कोई व्यक्तिगत रुचि उन्होंने नहीं दिखाई एक भी आत्मा को प्रभु के पास लाने के लिए, बचाए जाने के लिए। उन्होंने सब कुछ प्रभु के सेवकों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि धर्म प्रचारक पूर्ण शिक्षित प्रशिक्षित हों अपने इस काम के लिए, किंतु वो सब नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग करें। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक प्रेमी मसीही हृदय के द्वारा सिखाए जाने की जरूरत है। अनेक तो इसके अभाव में नाश हो गए जो बचाए जा सकते थे। यदि उन्हें उनके किसी पड़ोसी, सामान्य स्त्री या पुरुष ने व्यक्तिगत परिश्रम कर वचन सिखाया होता। कई प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें आमने सामने बुलाया जाए। हर एक परिवार आस पड़ोस, कस्बा व शहर जहां हम रहते हैं, हमारे लिए काम है। प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार का काम जो हमें करना है। यदि हम मसीही हैं तो निश्चित रूप से ये काम खुशी प्रदान करेगा। जैसे ही एक व्यक्ति बुराई से फिरकर एक सच्चा और अच्छा मसीही जीवन जीता है, उसके मन में दूसरों को सच्चाई बताने की इच्छा जागृत होती है। एक मित्र दूसरे मित्र को बताता और प्रभु यीशु सबका मित्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के मन में सच्चाई जो उद्धार दिलाती और पापों से शुद्ध करती है, उस सच्चाई को अपने हृदय में बंद करके नहीं रख सकता। सभी प्रभावशाली तरीकों में एक तरीका प्रभु की ज्योति को फैलाने का यह भी है कि व्यक्ति स्वयं परिश्रम करें। अपने घर में, पड़ोसियों के आंगनों में, बीमार के बिस्तर के पास बड़ी शांति से आप बाइबल का वचन पढ़ सकते, प्रभु यीशु और उसकी सच्चाई के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार आप वचन का बीज बो सकते हैं जो समय आने पर फूट निकलेगा और फलदायी होगा। नमक को उस वस्तु में घुल मिल जाना चाहिए जिसमें वो मिलाया गया है। इसे उस वस्तु में इस तरह मिलकर एक सार हो जाना है ताकि वस्तु को काफी समय सुरक्षित रख सके। इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रयास, बातचीत, मेलजोल आदि आत्माओं को बचाने की शक्तियां हैं। वे झुंड के झुंड या समूह में सुरक्षित बचाए नहीं जा सकते। उनके लिए व्यक्तिगत प्रभाव ही शक्तिशाली है। हमें उनके करीब आना होगा जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति में एक को तो ऐसा पाया कि उसे अवश्य बुलाया जाए अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। वो लोगों के बीच होता हुआ उस व्यक्ति के हृदय को छुआ, उस तक पहुंचा जिसकी वो भलाई चाहता था। उसने उन्हें सड़कों पर, उनके घरों में, नाव पर, परमेश्वर के भवन में, झील के किनारे और शादी के भोज में, उसने उन्हें उनके दैनिक कामों को करते समय ढूंढा और उन्हें अपने अन्य कर्तव्यों के बारे में सिखाया। अपना सलाह संदेश वो घर घर लेकर गया, परिवार के लोगों को फिर से मिलाया अपनी स्वयं की स्वर्गीय उपस्थिति के साथ। ये बड़ी ही अद्भुत बातें हैं जो उसकी अपनी सामर्थी सहानुभूति ने हृदयों को जीतने में मदद की। प्रभु यीशु का तरीका ही केवल वो तरीका है जो लोगों तक पहुंचने के लिए सफल और सही तरीका है। उद्धारकर्ता प्रभु स्वयं उन लोगों के बीच जाकर घुल मिल गया, जैसे कि वो जो उनकी भलाई करने की इच्छा रखता है। उसने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, उनकी जरूरतों को पूरा किया और उनका भरोसा जीता। तब उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो।
हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा प्रभु यीशु ने किया। वो जहां कहीं थे, आराधनालय में, सड़कों पर, नावों पर, जो जमीन से कुछ दूरी पर पानी में धकेल दी गई थी, फरीसियों के भोज में और एक महसूल लेने वाले की मेज पर, उसने उन मनुष्यों से एक उच्च जीवन पाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके बारे में बातें की। प्रकृति की वस्तुएं, दिनचर्या आदि सभी को लेकर उसने उनसे बातें की और बाइबल के सत्य वचनों के साथ जोड़कर बताया। सभी सुनने वालों के हृदय उसकी ओर खिंच गए, क्योंकि उसने उनके बीमारों को चंगा किया, दुखी मन वालों को सांत्वना दी, उनके बालकों को बाहों में लेकर उन्हें आशीष दी। जब भी बोलने के लिए वो अपना मुंह खोलता था, उनका पूरा ध्यान उसकी ओर हो जाता था और हरेक वचन कुछ लोगों के लिए जीवन की शुरुआत, उस जीवन के लिए। इसलिए ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए। हम जहां कहीं भी हों, हमें मौके की खोज में रहना चाहिए कि उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बता सकें।
यदि हम प्रभु का उदाहरण लोगों की भलाई के लिए लेते हैं तो हृदय हमारे लिए खुल जाएंगे जैसे प्रभु के लिए खुल गए। अचानक नहीं, किंतु स्वर्गीय प्रेम के द्वारा दी गई समझ द्वारा हम लोगों को प्रभु येशु, जो हजारों हजारों में एक हैं और जो बहुत प्रेमी प्रभु है, ये एक सबसे महान और ऊंचा काम है जिसमें हम अपने बोलने के गुण का इस्तेमाल प्रभु के काम में कर सकते हैं। और ये काम हमें सौंपा गया है कि हम प्रभु येशु मसीह, जो इकलौता गुनाहों को क्षमा करने वाला और अनंत मृत्यु से बचाने वाला उद्धारकर्ता है, लोगों को बता सकते हैं। उसकी उपस्थिति से घर का वातावरण शुद्ध हो गया और उसका जीवन खमीर के समान समाज के लोगों के बीच काम करने लगा। शुद्ध चरित्र, भला व्यक्ति जो उन लोगों के बीच चला फिरा जो घमंडी, स्वार्थी, दूसरों के बारे में न सोचने वाले, ढीठ, अन्यायी, महसूल लेने वाले, पैसा बर्बाद करने वाले, अधर्मी सामरी मूर्ति पूजक सिपाही, कठोर किसान और सब प्रकार के लोगों की भीड़, उसने सहानुभूति का एक शब्द यहां एक शब्द वहां बोला। जब भी उसने इंसानों को बोझ से दबे हुए देखा जिन्हें भारी बोझों को उठाना पड़ रहा था, उसने उनका बोझ उठाया और अपने स्वभाव के अनुसार उनसे प्रेम से, बड़ी दया के साथ परमेश्वर की भलाई के बारे में बताया। उसने उन्हें सिखाया कि वे अपने आप को देखें कि वे किन कीमती गुणों से भरे हुए हैं, जिन्हें वे सही उपयोग में लाएं तो उन्हें अनंत धन प्राप्त हो सकता है। उसने जीवन की सब अहंकार को निकालकर दूर कर दिया और अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाया कि जीवन का हर एक क्षण उसके अनंत परिणाम भी लाता है, और समय की कीमत को समझना और उसका उपयोग करना है सही व पवित्र कामों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। उसने हर व्यक्ति को जो उसके पास गया उसे खाली हाथ नहीं भेजा, किंतु सभी को अपनी आत्मा को बचाने के उपाय बताए। उसने अपने आप को जिस भी प्रकार के लोगों के बीच में पाया, उन्हें उनकी परिस्थितियां तथा समय के अनुकूल बिल्कुल उचित शिक्षा दी। उसने उन कठोर एवं ढोंगी लोगों को एक आशा दी, ये कहकर कि वे पूरी तरह निर्दोष व भले व्यक्ति बन सकते हैं यदि वे अपने आप में एक ऐसा चरित्र ले आएं जो उन्हें परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अवसर प्रदान करेगा। अक्सर प्रभु ऐसे लोगों के घर गए जो शैतान के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ होता था, और वे किसी भी तरह उसके जाल से छूट नहीं सकते थे। ऐसों के लिए जो निराश, बीमार, परीक्षाओं में पड़े हुए, पाप में गिरे लोगों से येशु बड़े प्रेम से बातचीत करता, जिनकी उन्हें जरूरत होती और वे समझ सकते थे। कुछ ऐसे भी मिले जिन्हें मुसीबतों और परेशानियों का सामना प्रतिदिन करना पड़ता था। ऐसों को उसने ढाढ़स रखने को कहा और बताया वे शैतान को हरा देंगे, क्योंकि प्रभु के दूत उनकी ओर है और वे उन्हें सफलता दिलाएंगे। आत्मिक जागृति और व्यक्तिगत प्रयास का समन्वय।
जब कलीसियाएं पुनर्जागृत हो जाती हैं, और ये इसलिए होता है कि कुछ व्यक्ति विशेष परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए काम करने को उत्साहित होते हैं, वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे होते हैं और विश्वास से मानते और उसके अनुसार पाते भी है। वह पूरी शिद्दत से, पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होकर काम करता है और लोग उसके समान आशीषों को पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और उन सभी आत्माओं पर आशीषों की बारिश होती है जो उन्हें तरोताजा कर देती है। ऐसा अद्भुत काम कभी नकारा नहीं जाएगा, इससे बड़े काम सही समय पर नियोजित किए जाएंगे। किंतु व्यक्तिगत और आपसी संबंध, अपने पड़ोसियों और मित्रों के प्रति किया गया परिश्रम सोचे गए परिणाम से कहीं अधिक ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। जरूरत है तो इस प्रकार की रुचि और परिश्रम की इन नाश होते हुए लोगों के प्रति जो बचाए जा सकें, क्योंकि प्रभु यीशु ने इन्हीं के लिए अपनी जान दी। एक जीवन भी कीमती है, क्योंकि कलवरी उसकी कीमत बताता है। एक आत्मा सत्य से जीती गई आत्मा वह साधन बन जाएगी दूसरों को जीतने के लिए, और उसके बाद आशीषों से भरे परिश्रम और उद्धार पाने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। आपके काम और अधिक सफलता पा सकते हैं उन बड़ी सभाओं के अलावा यदि वे आपसी मेलजोल से स्थापित हों, क्योंकि व्यक्तिगत परिश्रम और प्रभु की आशीष और अगुवाई मिलकर
एक अधिक अच्छा और पूरा काम सफल बनाया जा सकता है। फिर भी यदि आप केवल व्यक्तिगत आपसी मेलजोल से घरों में जाकर प्रभु का जीवित वचन पढ़ें व सुनाएं, लोगों से अपील करें, घर के सदस्यों से खुलकर बात करें, केवल छोटी महत्व की बातें नहीं बल्कि बड़ी महत्व की बातें जैसे उद्धार पाने का विचार उन्हें दिखाइए, कि वे देख सकें आपके हृदय का बोझ जो आत्माओं को बचाने के लिए आप पर है। लोगों तक जाओ। हमें लोगों का अपने पास आने का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें जहां है वहां ढूंढ लेना चाहिए। धर्मोपदेश मेज से सुनाया गया वचन के द्वारा काम केवल शुरू होता है। एक ऐसी भीड़ है जो सुसमाचार प्रचार के पास नहीं पहुंच सकती यदि उसके पास तक समाचार न पहुंचाया जाए। प्रभु यीशु के राज्य का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचार कार्य करने वाला सुसमाचार प्रचार संगठन है, जिसके सिद्धांत में आत्माओं के लिए परिश्रम, सभी को दया पाने का निमंत्रण देना शिष्यों का काम होता है। वे लोगों के द्वारा अपने पास आने का इंतजार नहीं करते बल्कि अपना संदेश लेकर उनके पास जाते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए अपने घर बुलाना। अपने पड़ोसियों को घर बुलाओ और उनके साथ बाइबल के कीमती वचनों को पढ़ो और अन्य पुस्तकें जो बाइबल की सच्चाई को समझाए। गानों को गाना, प्रार्थना आदि उनके साथ मिलकर करें। ऐसे छोटे समूहों में मसीह स्वयं उपस्थित होगा, जैसा उसने वायदा किया है, और हृदय उसके अनुग्रह के द्वारा छुए जाएंगे। फिस में जब पौलुस ने आराधनालय में निडर होकर बोलना प्रारंभ किया, तब सुनने वालों के बीच अक्विला और प्रिस्किल्ला भी थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि पौलुस को अभी तक सुसमाचार की पूरी ज्योति प्राप्त नहीं हुई है। उसे अपने पास ले आए और परमेश्वर की बातों को उसे भरपूरी से सिखाया। उनकी शिक्षा से उसने शास्त्र की पूरी समझ प्राप्त की और मसीही विश्वास का एक सबसे योग्य प्रवर्तक बन गया। मिलनसार बनो। वे सब जो प्रभु यीशु के काम में लगे हैं, उन्हें मैं यह कहूंगा कि वे जहां कहीं भी लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें, चाहे आग तापते हुए या और किसी भी स्थान पर, अपने मौके का फायदा उठाऊं। बाइबल खोलो और उन्हें वचन पढ़कर सुनाओ, सच्चाई से परिचित कराओ। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ज्ञान और काम को पूरा करने के द्वारा नहीं बल्कि आपने कितने हृदयों तक वचन पहुंचाया है इस पर निर्भर करेगी। मिलनसार होने और लोगों के करीब पहुंचने के द्वारा तुम लोगों के सोचने के नजरिए को बदल सकते हो। प्रभु यीशु के बारे में जो घर में एकत्र हों बताना अधिक सफल होगा बल्कि इसके कि खुले में, बड़े हॉल या कमरों में, कलीसियाओं में चलते फिरते दिए गए धार्मिक प्रवचनों के द्वारा लोगों के हृदयों तक पहुंचना।
जो यीशु का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु का लोगों के साथ जुड़ना और वचन के प्रति रुचि जागृत कर एक जरिया बनाने वाला उदाहरण जो मानवता के प्रति यीशु ने अपनाया था, उसे सभी को पालन करना चाहिए। हमें सामाजिक मेलजोल को त्याग नहीं देना है, हमें अपने आप को लोगों से छुपाना भी नहीं है। हर स्तर के लोगों तक पहुंचने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां वे हैं। बहुत कम लोग स्वयं आकर हमसे मिलते हैं। परमेश्वर की सच्चाई से लोगों का हृदय केवल धर्मोपदेश की मेज से वचन सुनाकर ही नहीं बदला जा सकता है। एक और ऐसा सफलतम प्रयास है जो छोटा जरूर है किंतु बहुत आशा बंधाता है, और वो एक गरीब का घर, उसका परिवार और बड़े लोगों की ऊंची इमारतें, अस्पतालों में और ऐसे सामाजिक आयोजन जिसमें वे बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। मसीह निषेधक नहीं था और उसने फरीसियों पर सामाजिक दोषारोपण किया कि उनके कठिन नियमों के कारण समाज बट गया, बिखर गया। उसने पाया कि धर्म के अधिकार को ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद कर दिया है, जो केवल बहुत ही पवित्र मुद्दा है। प्रतिदिन के जीवन में इसी विभाजन की दीवार को गिरा दिया। अपने संपर्क में आने वालों से उसने ये नहीं पूछा कि वे किस जाति के हैं, किस कलीसिया के सदस्य हैं। उसने अपने मद करने की सामर्थ को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसे उसकी आवश्यकता थी। अपने आप को किसी छुपने के स्थान एकांत कुटिया में ये छुपा न रखा कि वो तो स्वर्ग का निवासी है। उसने कठिन परिश्रम किया मानवता को बचाने के लिए। उसने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि बाइबल का धर्म शरीर के नाश होने के बारे में नहीं है। उसने सिखाया कि पवित्र और बुराई व पाप रहित धर्म
केवल कुछ निश्चित समय के लिए और विशेष अवसरों के लिए ही नहीं है। ये हर समय और हर स्थान के लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाता है और उस पर अपनी धार्मिकता की खुशियों भरी रोशनी फैलाता है। उन लोगों के पक्षपात के सामने प्रभु ने इन तिरस्कृत लोगों की सेवकाई करना चुना। उनके साथ उनके घरों में रहा, उनके साथ भोजन किया, उनके द्वारा पकाया हुआ भोजन, उनके हाथ से परोसा गया भोजन ग्रहण किया, उनको सड़कों पर सिखाया और उनके साथ बड़ी नम्रता और दयालुता का व्यवहार किया, सहानुभूतिपूर्वक रुचि दिखाना। वे लोग जो जीवन के कठिन समय व परिस्थितियों का सामना करते हुए एक संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ऐसों को थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी चिंता करना, जिसमें कुछ खर्च भी नहीं होता, उन्हें नया जोश, नई ताकत प्रदान कर देता है। दयालुता भरे शब्द, थोड़ी सी की गई चिंता, देखभाल, उन लोगों के ऊपर छाए संदेह और परीक्षाओं के बादल को हटा देते हैं। प्रभु येशु ही के समान सच्ची सहानुभूति, जो हृदय की गहराइयों से आती है, यदि लोगों को मिलती है तो उसकी सामर्थ्य इनके हृदय के द्वारों को खोल देती है और उनको केवल प्रभु के आत्मा के छू लेने की जरूरत होती है। हजारों हृदयों तक बड़े सीधे, सरल और नम्र तरीके से पहुंचा जा सकता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान वे स्त्री व पुरुष जिन्हें सारा जगत जानता और उनकी प्रशंसा करता है। इन्हें कहे गए साधारण शब्द जो उस व्यक्ति ने कहे जो परमेश्वर से प्रेम करता है, बड़ी राहत पहुंचाते और उन्हें फिर अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और कौन है जो अपने शब्दों से स्वाभाविक प्रेम को दर्शाता है? क्योंकि सांसारिक लोग उन्हीं बातों को कहते हैं जो दिन रात उनके मन में आती रहती है। जिन विचारों में वे खोए रहते, उन्हीं बातों को जबान पर लाते हैं। अधिकतर पहले से कहने या बोलने के लिए तैयार किए गए शब्द या भाषण उतना प्रभाव नहीं डालते हैं, किंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों द्वारा कहे शब्द जो हृदय की गहराई से स्वाभाविक और सहजता से कहे जाते हैं, वे लोगों के हृदय के द्वार जो काफी समय से बंद पड़े थे खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव बताना।
वे जिन्होंने मसीह यीशु को पूरी तरह अपना लिया है, वे ही अपने अनुभव स्वाभाविक रूप से लोगों के साथ बांटेंगे, कदम कदम पर जहां इन्हें पवित्र आत्मा ले जाएगा। उनकी प्रभु के ज्ञान को पाने की भूख और प्यास तथा प्रभु यीशु को जानने की इच्छा जिसे पिता ने भेजा है पूरी होगी। और जब वचन की खोज उनकी प्रार्थनाएं, उनकी स्वयं की तकलीफें उन्हें प्रभु के करीब ले आएगी। तेरे पाप क्षमा किए गए, प्रभु उनसे कहेगा। ये तो बिल्कुल अनहोना है कि कोई इन बातों को किसी से न कहें, छुपा कर रखे, या वे जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे भी ऐसा न करें। वे अवश्य दूसरों को बताएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को सच्चाई के खजाने से भरपूर किया है। अतः वे चाहेंगे कि अन्य लोगों को भी इस खजाने को पाने की आशीष मिले। और जैसे ही वे परमेश्वर की इस अनुग्रह के भरपूर भंडार के बारे जान लेते, तब और अधिक प्रभु यीशु का अनुग्रह इन्हें प्राप्त होगा। हर एक आत्मिक ताकत जागृत होकर काम में लग जाए। जिनसे भी मिलते हो उन्हें बताओ कि सब चीजों का खात्मा जल्दी ही होने वाला है। प्रभु यीशु उन लोगों के हृदय के द्वार खोलेगा और उनके मस्तिष्क पर एक अनंत छाप छोड़ेगा। आत्मिकता में सोए हुए स्त्री व पुरुषों को जगाने में लगे रहो। उन्हें बताओ कि तुमने कैसे प्रभु यीशु को पाया और कितने आशीषित हुए हो जब से प्रभु की सेवा में लगे हो। उन्हें ये भी बताओ कि प्रभु के कदमों में बैठकर वचन सीखने पर कितनी आशीष मिलती है। उन्हें बताओ कि मसीही जीवन कितना सुखमय और आनंद से पूर्ण है। जब तुम उन्हें ये प्रेम भरे शब्द बताओगे तो वे लोग तुमसे प्रभावित होंगे और जानना चाहेंगे कि ये कीमती मोती तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तुम्हारे खुशी से पूर्ण उत्साहवर्धक शब्दों से वे देख सकें कि निश्चित रूप से तुमने एक ऊंचा मुकाम पा लिया है। ये एक सीधा, सरल और उचित प्रचार कार्य है, जो यदि किया जाता है तो अनेक सोए हुए लोग स्वप्न से जाग उठेंगे, जिन्हें परमेश्वर अपने हथियार के रूप में काम में लाने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ लोग उन्हें पर्याप्त नहीं मानते हैं, किंतु यदि वे प्रार्थना कर वचन का प्रचार सामान्य रूप से भी करें तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस प्रेम की खातिर जो वे प्रभु यीशु से करते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं।
जैसे यदि वे साधारणतः बाइबल वचन पढ़कर सच्चाई को बताने के लिए अपने स्वयं के अनुभवों और जीवन में घटी घटनाओं को बताते, तब पवित्र आत्मा उनके मन और आचरण पर अपनी छाप डालता है। तब उनकी इच्छा प्रभु की इच्छा के अधीन हो जाती है, और प्रभु का सत्य जो लोगों को समझ नहीं आता, वह उनके हृदय तक पहुंचकर एक जीवित परिवर्तन लाता है और एक आत्मिक सच्चाई बन जाता है। व्याख्यान प्रभावकारी। उसके दया से पूर्ण संदेश अलग अलग प्रकार के थे जो सुनने वालों को पसंद आते थे। उसे पता था कि यदि थकाने वाला मौसम है तो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि उनके होठों पर अनुग्रह उड़ेला गया था कि वह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रभु की सच्चाई का खजाना लोगों को पहुंचा सके। उसके पास वचन से घृणा करने वालों के दिमागों तक पहुंचने का तरीका पता था, और उन्हें अपने व्याख्यान से न केवल वचन की ओर फेर लाता बल्कि आश्चर्यचकित भी कर देता था। कल्पना करते हुए वह उनके हृदय तक पहुंचता और वचन का संबंध सामान्य दैनिक जीवन से जोड़कर समझाता था। यद्यपि वे उदाहरण साधारण होते थे, फिर भी उनमें अर्थ की गहराई बड़े अद्भुत तरीके से पाई जाती थी। आकाश के पक्षी, मैदान के कुमुदनी बीज, भेड़े और चरवाहा आदि का प्रभु ने उदाहरण देकर अनंत सच्चाई के बारे में सिखाया। और जब कभी भी उसके सुनने वाले इन वस्तुओं को देखते तो प्रभु के वचन याद करते थे। प्रभु यीशु के उदाहरण लगातार उसकी शिक्षाओं में दोहराए गए। प्रेरितों ने पूरी मेहनत की उन मूर्ति पूजकों को सृजनहार परमेश्वर और उसका पुत्र जो पूरी मानव जाति को बचाने वाला है के बारे में बताने के लिए। सर्वप्रथम इन प्रेरितों ने परमेश्वर के कामों का जो अद्भुत थे उन पर उनका ध्यान केंद्रित किया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऋतुओं के बदलने का सुंदर क्रम, वो ऊंचे शक्तिशाली बर्फीले पर्वत, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऐसे अनेक आश्चर्यजनक प्रकृति जो मनुष्य की समझ से परे है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस अद्भुत रचना के द्वारा प्रेरितों ने मूर्ति पूजकों को एक महान शासक जो पूरे जगत पर राज करेगा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मौलिक प्रयोगों से बात की शुरुआत। पौलुस एक अच्छा वक्ता था। उसमें बदलाव के पहले वो हमेशा अपने सुनने वालों को अच्छे वक्तव्यों से प्रभावित कर देता था, किंतु अब उसने ये सब बंद कर दिया था और कविताओं की व्याख्या करना और उन्हें अभिनय करके दिखाता, जो शायद देखने में अच्छा लगता और कल्पना को एक रूप दे सकता था, किंतु ये सब प्रतिदिन के अनुभवों से मेल नहीं खाते थे। तब पौलुस ने साधारण भाषा का प्रयोग कर लोगों के हृदयों में सच्चाई को घर करने दिया, जो अधिक महत्व का था। सच्चाई का काल्पनिक प्रस्तुतीकरण शायद लोगों में सनकी होने की भावना पैदा कर सकता था, और अधिकतर इस प्रकार पेश किया गया सत्य वो जरूरी भोजन की पूर्ति नहीं करता जो लोगों के विश्वास को ताकतवर व मजबूत बनाने में जरूरी थी, जो उन्हें जीवन के संघर्ष में काम आती। समय पर पूरी की जाने जरूरतें, वर्तमान परेशानियां, संघर्षरत जीवन, ये सब बातों का हल मसीही मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर दिए निर्देशों के द्वारा निकाला जाना चाहिए। सकारात्मकता से सत्य को थामे रहना। जब भी तुम सच्चाई को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हो, तुरंत ही विरोधी अपनी बात को सही बताने की बहस को लेकर उठ खड़े होते हैं। यदि आप विरोधी का सामना करने को उठें तो बहस बढ़ती जाएंगी, जो तुम उचित नहीं समझोगे। अतः ऐसे मौके पर अपनी सच्चाई को थामे रहने की जरूरत है। इस समय स्वर्गदूत आपकी परेशानी समझते और आपका साथ देते हैं उन लोगों की बात को दबाने में। उस परिस्थिति में उनके उठाए नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान मत दो, किंतु अपने दिमाग में सच्चाई को सकारात्मक रूप से थामे रहकर विश्वासपूर्ण प्रार्थना और हृदय की गहराई से सत्यता का साथ देना जरूरी है। यात्राओं के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिधि रखना। जो समय के अनुसार प्रभु के सेवक होने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु के तरीके को अच्छी तरह जानने और समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अवसर, स्थान व समय का पूरा पूरा फायदा उठाया। जैसे जब वो कपरनियम में था, आते और जाते वक्त वो वहां ठहरा और वहां प्रचार कार्य इस तरह किया कि वो शहर उसका अपना नगर कहलाया। ये नगर प्रभु यीशु के काम का केंद्र ठहरा, क्योंकि ये नगर मुख्य मार्ग पर दमिश्क से यरूशलेम और मिस्र को और मेडिटेरेनियन समुद्र तक जाता था। अतः ये एक बहुत बड़ा यात्रा के दौरान ठहरने का स्थान ठहरा। दूसरे स्थानों व देशों से अनेक लोग इस नगर से गुजरते थे या आते जाते समय कुछ देर आराम किया करते थे। यहां यीशु मसीह उन सब देशों के, सब वर्ग के, अमीर और ऊंचे, गरीब और निम्न दर्जे के, और उसकी शिक्षाएं अन्य कई देशों और अनेक घरों तक पहुंच गईं। भविष्यवाणियों की खोजबीन। जांच पड़ताल लोगों को उत्साहित करेगी, सावधानी उन्हें उद्धारकर्ता की ओर लेकर आएगी और उसका काम जगत के सामने लाया जाएगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध स्वास्थ्य केंद्र और यात्रियों का आने जाने से भरे पड़े हैं, जिनमें हजारों स्वास्थ्य व खुशियों की तलाश में हैं। ऐसे स्थानों में प्रचारकों को रखा जाना चाहिए, पुस्तक विक्रेताओं को जो इस योग्य हों कि लोगों की इस भीड़ को अपने प्रचार से जकड़ लें। ऐसे कार्यकर्ताओं को ये देखने दिया जाए कि जब उनको अवसर मिले तो वर्तमान समय अनुसार लोगों को प्रचार करें अथवा उनके साथ संगति करें, लोगों से बातचीत करने का एक भी मौका हाथ से न जाने दें। पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ वे लोगों से मिले, उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा फैलाया गया सुसमाचार मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का वचन पूरी तरह स्पष्ट रूप से और सामर्थ्य से प्रस्तुत किया जाना है, ताकि जिनके पास कान हों वे सत्य को जाने। इस प्रकार सुसमाचार जो आज की सच्चाई है, इस तरह इन लोगों के सामने रखा जाए जो उसे जानते नहीं है। तब वो केवल कुछ ही लोगों द्वारा माना न जाकर उनके द्वारा अपने अपने घरों में ले जाया जाएगा, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, चंगाई की सेवकाई और क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स पुस्तकें विशेष रूप से पर्यटक केंद्रों में इस्तेमाल करने के लिए प्रदत्त की गई है, और हर संभव कोशिश की जाएगी कि हर एक उस व्यक्ति को जो इन्हें अपने खाली समय में पढ़ने का इच्छुक हैं, इन पुस्तकों की एक प्रति मिल सके। स्वास्थ्य केंद्र और शारीरिक इलाज के स्थानों की स्थापना की जाना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों में समुद्री किनारों पर बसे विश्राम गृह शामिल किए जाने चाहिए, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज जंगलों में गूंजती थी, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। इसी प्रकार प्रभु के संदेश वाहक की आवाज भी उन बड़े पर्यटक केंद्रों और समुद्र किनारे के रेस्ता में गूंजनी चाहिए। दो दो कर भेजा जाना। अपने सब चेलों को पास बुलाकर यीशु ने दो दो करके उन्हें नगरों व गांवों में जाने को कहा। कोई भी अकेला नहीं भेजा गया, किंतु भाई के साथ भाई और मित्र के साथ मित्र। इस प्रकार वे एक दूसरे की मदद कर उत्साहित कर सकते, एक दूसरे को सलाह दे सकते, दोनों मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते, और हरेक की ताकत दूसरे की कमजोरी को ताकत प्रदान कर सकती थी। ठीक इसी प्रकार आगे चलकर उसने 70 को प्रचार करने भेजा। उद्धारकर्ता यीशु का ये मकसद था कि सुसमाचार प्रचार करने वाले संदेशवाहक इसी तरह एक दूसरे के सहयोगी हों। हमारे अपने समय के यही प्रचार कार्य कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा यदि यही उदाहरण ज्यादा नजदीकी से पालन किया गया। स्वास्थ्य संबंधी धर्म प्रचार यात्राएं। जो निर्देश मुझे प्रभु यीशु ने समय समय पर दिए, मैं जानती हूं कि काम करने वाले होने चाहिए जो स्वास्थ्य संबंधी प्रचार कार्य शहरों और गांवों में कर सकें। जो ऐसा करते हैं वे अनेक आत्माओं को जीत सकते हैं, चाहे वे ऊंचे व नीचे स्तर के लोग हों। इस कार्य के लिए हमारे वफादार पुस्तक विक्रेता बढ़िया तैयारी कर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सुसमाचार व स्वास्थ्य सेवक। कार्यकर्ता जो सुसमाचार प्रचारक के साथ स्वास्थ्य सेवक भी हों, इसके लिए वर्षों की तैयारी का समय नहीं है। वह दरवाजा जो अभी सच्चाई जानने के लिए खुला है, थोड़ी देर में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी संदेश पहुंचाऊं, देरी न करो, न ही शैतान को मौका दो कि वह उन खुले पड़े खेतों को अपने कब्जे में कर लें। छोटे छोटे समूह के लोगों की टीम को काम करने के लिए भेज दो, जैसा प्रभु यीशु ने किया था। इन्हें सुसमाचार प्रचारकों की तरह ही काम करने दो। हमारे पत्र पत्रिकाएं उन तक बिखरा दें और सच्चाई बताएं जो उनसे मिलते हैं। उन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करने दो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, ड्रग्स से नहीं बल्कि प्राकृतिक इलाज के द्वारा। उन्हें सिखाओ कि कैसे खोई हुई ताकत वापस लाई जाती है और बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो, किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दो। बीमारों और रोग से पीड़ितों से मिलो और उन पर दया के द्वारा रुचि दिखाओ। यदि हो सके तो उन्हें ज्यादा आराम देने का प्रयास करो। इन सब से तुम उनके हृदय को जीत सकते हो और उन्हें प्रभु यीशु का वचन सुना सकते हो। तुम्हारा हर प्रकार का परिश्रम आखिरकार सबसे सामने लाया जाएगा। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं जो अपना कर्तव्य अपने करीबी लोगों से निभाते हैं। औद्योगिक शिक्षा। ऐसे अनेकों गरीब परिवार हैं जिनकी भलाई के लिए अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो उन्हें एक जगह स्थापित कर उन्हें ये सिखाए कि जीविका कैसे कमाई जाती है। इस प्रकार की सहायता और निर्देश शहरों में नहीं किए जा सकते। यहां तक कि देश में भी, जहां अधिक संभावना है, ऐसे लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। बेचारे गरीबों को काम की आवश्यकता है, इनका पूरा समाज। औद्योगिक प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं से दूर रखा जाता है। बहुत से परिवारों को छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ता, जिसमें फर्नीचर व घरेलू सामान, कपड़े, किताबें, अन्य उपकरण आदि की कमी होती है। आरामदेह साधन व सुविधाओं का अभाव तथा संस्कृति की कमी पाई जाती है। असभ्य कमजोर शरीर, भद्दे दिखने वाले, अपनी वंशानुक्रम के पिछड़ेपन को परिभाषित करते हैं, जिनमें प्रारंभ से ही बुरी आदतें पाई जाती हैं। इन लोगों को प्रारंभ से ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इनका जीवन हमेशा से बुरा तथा भ्रष्ट रहा है, क्यों न इनमें भी शिक्षित प्रशिक्षित कर सही आदतें डाली जाएं। विभिन्न उद्योगों को स्थापित किए जाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीब परिवारों को काम मिल सके। बढ़ई, लोहार तथा अन्य सभी कोई न कोई काम करना अवश्य जानते हैं। उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि वे दूसरों को सिखाने में और जिन्हें काम नहीं आता उन्हें बताने में मदद करें, जो बेरोजगार हैं।
मसीही किसान वास्तव में गरीबों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। वे उन्हें जमीन पर घर बनाने के साथ साथ फसल के लिए भूमि तैयार करना और उसे उपजाऊ बनाने की शिक्षा देना आदि, उन्हें कशश करने में काम आने वाले उपकरणों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना तथा पौधे रोपना और बागों की रखवाली करना आदि काम सिखाना। गरीबों की सहायता के लिए स्त्री व पुरुषों दोनों के लिए काफी क्षेत्र हैं जहां वे काम कर सकते हैं। एक अच्छा रसोईया, चौकीदार, कपड़े सिलना, परिचारिका, नर्स आदि सभी की जरूरत पड़ती है। ऐसी गरीब स्त्री पुरुषों को कपड़े सिलना, खाना बनाना, बीमारों की देखभाल करना, घर की रखवाली करना आदि काम सिखाए जाएं। लड़के व लड़कियों को कोई उपयोगी कामकाज और उद्योग करना सिखाया जाए। सुसमाचार प्रचार सभा में आमंत्रण। एक व्यक्ति अनेक काम कर सकता है, यदि वो उस काम को करने का मन बना ले, मन में ठान ले। कई ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के भवन में वचन को सुनने एवं उपदेश सुनने नहीं जाते। व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा बुद्धिमानी से, सरल व सहज रूप से ऐसे लोगों को प्रभु के भवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है। उनके जीवन में बदलाव पूरी तरह से उनके मन मस्तिष्क को पहली बार ही वर्तमान समय की सच्चाई को सुनकर आ सकता है। यदि आपकी सलाह की अवहेलना भी की जाती है तो निराश मत होइए। लगातार प्रयास करते रहें जब तक जीत का ताज आपके सिर पर ना रखा जाए। जून 1880। सबको सब्बत स्कूल में एकत्र करें। दूसरा काम, और ये भी है कि बच्चों और नौजवानों को सब्बत स्कूल में इकट्ठा करें। इस तरह नौजवान भी अपने योग्यतानुसार परिश्रम कर प्रभु यीशु का काम कर सकते हैं। वे आत्माओं के भविष्य को एक मुकाम दे सकते हैं। वे कलीसिया के लिए काम कर सकते और जगत के लोगों तक प्रभु की महानता का प्रचार कर सकते, जो अभी तक नहीं किया गया। और जब अंतिम लेखा लिया जाएगा तक शाब्बास शब्द उन भले व विश्वास योग्य सेवकों को सुनाई देगा। लिखकर एवं बोलने के द्वारा।
लोगों को पत्र पत्रिकाएं लिखकर भेजने एवं बोलकर फोन पर बताएं कि प्रभु यीशु जीवित है, हमारे लिए पिता से प्रार्थना करने के लिए कि हम बचाए जाएं, प्रभु यीशु के साथ एक होकर उसके काम में शामिल हो जाएं, उस उद्धारकर्ता के पीछे हो लें जिसने स्वयं का इनकार किया जबकि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर अपना प्रेम दिखाने आया था। हर एक का काम करने का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है, किंतु प्रभु यीशु की बुलाहट और अगुवाई लोगों से अलग अलग तरह काम करवाती है, और इन सभी को एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। चाहे लिखकर या बोलकर प्रभु के लिए परिश्रम करें। प्रभु यीशु सूली पर चढ़ गया, इसके बारे में बात करें, प्रार्थना करें और गीतों में गाकर प्रचार करें, तब लोगों के हृदय पिघलेंगे और जीते जाएंगे। कलम इंसान के हाथ में एक शक्ति है जो अपने हृदय की वेदी पर सत्य की आग को जलाए रखते हैं, और जिनके पास योग्यता के साथ जोश भी होता है प्रभु का काम करने के लिए, जिसे वे भरपूर न्याय के लिए संतुलित रखते हैं। वह पेन जो खरे सत्य के झरने में डुबोया गया है, वह दुनिया के अंधेरे कोनों में रोशनी की किरणें बिखेर सकता है, और जो अपनी किरणें प्रतिबिंबित कर एक नए जोश व ताकत से पूर्ण होकर उस रोशनी को सब जगह फैला सकता है। हमारे सेवकों को अपनी पूरी ताकत प्रचार करने में ही नहीं लगाना चाहिए और वहीं काम समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सदस्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे किस प्रकार और लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताकर एक प्रचार कार्य सहायक के रूप में काम करें, जिसे अपनी सेवकाई की समिति में चक्र के अंदर चक्र के समान है। अंदर के चक्र की गति अच्छी स्वस्थ रहते हुए बाहरी चक्र को चलाने का शक्तिशाली काम करती है। इस आंतरिक चक्र को काम करने से रोक दो और फिर देखो परिणाम क्या होता है। जीवन व कार्यों में अर्थात चलने में कमी आती जाएगी और साथ ही सेवकाई समिति भी प्रभावित होगी।
कभी भी एक जागरूक सेवक को थकना नहीं चाहिए। इस कार्य में आप सब सफलतापूर्वक शामिल हो सकते हैं, केवल यदि आप प्रभु यीशु से जुड़े हों। लोगों से उनके विचार जानने के लिए लिखने से पहले अपनी आंखें बंद कर अपना हृदय व मन प्रभु की ओर लगाओ, प्रार्थना करो, ताकि कुछ जंगली शाखाओं को काटकर सच्ची दाखलता में साटा जा सके, जिससे कि प्रभु के लिए फल ला सकें, उसकी महिमा कर सकें। वे सब जो नम्र हृदय से प्रभु के कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करते, प्रभु की दाख की बारी में काम करने के लिए तैयार रहते हैं।